मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 11 फरवरी 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों फिलहाल हम लोग जीवन और फिजिक्स पर बात कर रहे हैं और कुछ ज़्यादा ही विस्तार के साथ बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि आप सबको बोरियत नहीं हो रही होगी क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं कि उसमें फिजिक्स की बात कम हो और फिजिक्स के माध्यम से जिंदगी की बात ज़्यादा हो। और इसी के तहत कल मैंने अनुशासन की बात की थी, डिसिप्लिन की बात की थी कि किस तरीके से पूरी की पूरी प्रकृति में या हमारे जीवन के जितने भी पक्ष हैं, कोई भी पक्ष आप अपनी कल्पना में ले आइए, अपने विचार में ले आइए और फिर जानने की कोशिश कीजिए कि जीवन का यह जो पक्ष है या जो कुछ भी हो रहा है वह अनुशासन के तहत हो रहा है या बिना अनुशासन के हो रहा है। बिना अनुशासन के है, कहने का मतलब है कि एट्रेंडम तरीके से हो रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो कर रहा हो और चीजें हो रही हो। क्या सच में ऐसा हो रहा है? और जैसे ही कहीं भी ये जो अनुशासन है भंग होता है, जरा सा भी भंग हो जाए तो आप देखिए कि कैसे चीजें गड्डम गड्ड होने लगती हैं और नष्ट भी होने लगती हैं। इसीलिए जो अनुशासन है उसी का एक दूसरा नाम आप कह सकते हैं कि अनुपात है, रेशियो है। यानी कि जब अनुशासन की हम बात करते हैं तो देखिए केवल उसमें एक ही चीज नहीं होती। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस पृथ्वी पर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, तत्व भी है, उसके साथ ही साथ फिर मिले हुए वस्तुएं भी हैं, लेकिन ज्यादातर वस्तुएं एक से अधिक वस्तुओं से मिलकर बनी है। और अगर हम अपनी जिंदगी पर अप्लाई करें तो मुझे लगता है कि जो हमारा मनुष्य का शरीर है शायद सबसे अधिक चीजों से मिलकर के बना हुआ है। हालांकि ठीक है, ये बात कहते हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह जीवन शरीर अधीरा अधम शरीरा, यानी कि पांच तत्वों से मिलकर यह शरीर बना है, लेकिन पांच तत्व ही नहीं है, या यूं कह लीजिए कि इन पांच तत्वों को मिलाने के बाद इतने ढेर सारे तत्व हमारे शरीर में हो गए हैं कि जिनकी अगर आप गिनती करने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि इस प्रकृति में या हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में और यहां तक कि हमारे भौतिक शरीर में जो कुछ भी हम देख रहे हैं या जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं वो केवल एक चीज नहीं है, वो बहुत सी चीजों से मिलकर बनी हुई चीज है। जैसे अगर आप सब्जी बनाते हैं तो सब्जी कई चीजों से मिलकर के बनी हुई है, बनती है ना, उसमें मसाला भी है, तेल भी है, अग्नि की जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है, पता नहीं कितनी चीज है। क्या जो एक चीज की आप सब्जी बनाते हैं क्या वो एक सब्जी ही केवल इकलौती है? उसमें कितनी सारी चीजें हैं, जब आप उसका रासायनिक विश्लेषण करेंगे तो पता लगेगा कि इसमें ये विटामिन है, ये प्रोटीन है, ये सोडियम है, फलाना फलाना, पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं। तो आपके दिमाग में मुझे लगता है कि ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि जो भी वस्तुएं इस प्रकृति पे मौजूद हैं, इस धरती पर मौजूद हैं, वो इकलौती नहीं है। हमने उसे एक नाम दे दिया है कि ठीक है ये नमक है, ये पानी है, ये टेबल है, लेकिन वो मिलकर बहुत सारी चीजों से बनी है। तो ये जो बहुत सारी चीजों से जो किसी चीज का निर्माण हुआ है ये क्या है? यही अनुपात है। और जब तक यह अनुपात अपने डिसिप्लिन में होते हैं, यानी कि अपने अनुपात में रहते हैं, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जैसे ही यह अनुपात गड़बड़ होता है प्रॉब्लम होने लगती है। क्या आपको मुझे इसके लिए बताने की जरूरत होगी? आप देखिए कि भूकंप कब आता है, जब पृथ्वी का आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है। तो आंतरिक संतुलन बिगड़ गया, अब किस वजह से बिगड़ा ये आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं कि ताप अधिक हो गया, दबाव अधिक हो गया, उससे पृथ्वी का अंदर का तापमान जो संतुलन है वो बिगड़ गया और फिर भूकंप आ गया, या ज्वालामुखी अंदर का तापमान अधिक हुआ, पृथ्वी की पपड़ी पर वो जोर मारने लगा और ज्वालामुखी के रूप में विस्फोट हो गया। क्या हमें क्रोध भी इसी तरीके से नहीं आता है? हम अपने आंतरिक संतुलन, हमारे अंदर जो स्थायी भाव है, नौ तरह के जो स्थायी भाव बताए गए हैं, उसमें क्रोध भी है, उसमें प्रेम भी है, उसमें शांति भी है, उसमें करुणा भी है, उसमें विभत्स भी है, उसमें रौद्र भी है, ये सारे के सारे हमारे अंदर के स्थायी भाव हैं। जब इन स्थायी भावों के अनुपात में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो पता लगा कि फिर कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ हो जाता है, गुस्सा आ जाएगा, प्रेम उमड़ पड़ेगा, बहुत ज्यादा मन में शांति की भावना आ जाएगी, जो भी है। मैं इस बात पर बिल्कुल नहीं जा रहा हूं कि ये अच्छा है या बुरा है, मैं तो सिर्फ इस बात की बात कर रहा हूं कि अनुपात और डिसिप्लिन को हम यहां समझें। यानी कि अब आप देखिए कि हम यहां स्थापित कर चुके हैं कि इस धरती पर जो कुछ भी हो रहा है वो एक डिसिप्लिन के तहत हो रहा है। और देखिए यहां पर कि मैं बाद में मिस कर जाऊंगा, इसे डिसिप्लिन से ही शब्द बना है डिसाइपल। डिसाइपल का मतलब होता है शिष्य, 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 यानी कि जो अनुशासन में रह रहा है। वो किस अनुशासन में रह रहा है? जो डिसाइपल है यानी कि जो शिष्य है वो किस अनुशासन में रह रहा है? वह उस अनुशासन में रह रहा है जो उसके गुरु ने उसे बताया है, चाहे काम करने के लिए बताया हो, जीवन जीने के लिए बताया हो, कर्म कांड ही बताया हो, विचारों के स्तर पर बताया हो। वह अपने गुरु के द्वारा दिए गए डिसिप्लिन का बहुत अच्छे तरीके से पालन करता है, उसे फॉलो करता है, और चूंकि वह गुरु के द्वारा दिए गए डिसिप्लिन को फॉलो कर रहा है इसीलिए वह डिसाइपल कहला रहा है, जिसे हम शिष्य कहते हैं। शिष्य होना बड़ा मुश्किल काम होता है, और आप शिष्य किसी के भी हो सकते हैं। जो भक्त है, भक्त भी एक तरह का शिष्य ही है। अब मैं नकली शिष्य और असली शिष्य और अच्छे शिष्य और बुरे शिष्य की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो भक्त है वो क्या कर रहा है कि ईश्वर के प्रति अपने अनुशासन का वह पालन कर रहा है, वह भक्त कहलाने लगता है। तो दोस्तों, जैसे ही हमारे इस डिसिप्लिन के अनुपात में कुछ भी गड़बड़ी होती है, गड़बड़ होने लगता है। अब हमारा जो आयुर्वेद का पूरा सिद्धांत है, कफ पित्त वात, तीन चीजों का अनुपात जब तक शरीर में सही रहता है तब तक हम बीमार नहीं पड़ते, हम बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ कर रहे होते हैं। और जैसे ही इनमें से किसी के भी अनुपात में कुछ ऊपर नीचे हुआ, वैसे ही आप देखिए कि क्या होने लगता है, हम बीमार पड़ जाते हैं। ब्लड प्रेशर का होना, दिल का धड़कना, हार्ट फेल होना, जितनी भी चीजें इस धरती पर देख रहे हैं, तूफान आ रहे हैं, आंधियां चल रही हैं, वो क्या हो रहा है? तापमान में कहीं गड़बड़ हो रहा है ना, कि जो तापमान होना चाहिए था वो किसी वजह से वो तापमान उस तरीके से नहीं रहा, तो हवाएं तेज चलने लगी, हवाएं कम चलने लगी, समुद्र में तूफान उठने लगे, ऊंची ऊंची लहरें आ गई, यही सब हो रहा है। मुझे लगता है कि इस बात को समझना बहुत जरूरी है, जो पूरी की पूरी जो प्रकृति काम कर रही है, अगर हम इसे समझ लेते हैं तो फिर हम अपने जीवन को समझने लगते हैं, या यूं कह लीजिए कि जीवन के प्रति हमारी जो समझ है वो थोड़ी सी अलग तरीके की होने लगती है। फिर हम उसे भाग्य पर नहीं छोड़ते, फिर हम उसे ईश्वर पर नहीं छोड़ते, फिर हम उसको दूसरे को दोष नहीं देते। ठीक है, हमारे जीवन में दूसरे भी शामिल होते हैं, इसलिए दूसरों के कहे और किए हुए का भी प्रभाव समाज पर पड़ता है, हम पर भी पड़ता है, और हम जो करते हैं, जो सोचते हैं, उसका प्रभाव भी पड़ता है। तो ये सब मिलकर जिस अनुपात का निर्माण करते हैं, सच पूछे तो उसी अनुपात से फिर हमारा जीवन संचालित होता है। तो दोस्तों, ये मैंने थोड़े से अनुपात की बात आपसे की है, क्योंकि जो डिसिप्लिन है बेसिकली वो सही अनुपात ही है। सरकार ने कानून बनाए हुए हैं, जब तक आप इस कानून का बहुत अच्छे तरीके से पालन करते हैं, जिस सीमा तक भी उन्होंने पालन करने को कहा है, तब तक आप अनुशासन में रहते हैं, और जैसे ही उसे तोड़ते हैं तो या तो कोई प्रकृति आपको उसकी सजा दे देगी, नहीं तो अगर सरकार पकड़ लेगी तो सरकार आपको सजा दे देगी, यानी कि उसका दंड हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे वो दंड सरकार ले, चाहे वो न्यायालय ले, चाहे हमारा जीवन ले। तो दोस्तों, आज मैंने आप सबसे अनुपात के बारे में थोड़ी सी बातें की हैं, इस पर हम लोग और बातें करेंगे, क्योंकि मुझे तो इस विषय पर बात करने में मजा आ रहा है और मुझे यकीन है आप सबको भी मजा आ रहा होगा। तो आप सब मुझे अपने अपने विचारों से अवगत कराएं। आज की लाइफ मैनेजमेंट में फ्रेंड्स बस इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और ढेर सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए अब इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।